वैदिक ऋषि परंपरा वेदों के समान अनादि एवं अपौरुषीय है। इसका समग्र स्वरूप नित्य विभु व्यापक वेदों की ज्ञान विज्ञानमयी अमृत धारा के साथ अविनाभूत कभी पृथक न होने वाले रूप में प्रतिबिंबित व परिलक्षित इसका स्वरूप होता है। वेदों की यह ज्ञान विज्ञानमयी अमृत धारा सृष्टि एवं जीवन के आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक रूप त्रिविध आयामों के अंतर्गत अखंड रूप से प्रवर्तित है। इस अमृत धारा का निदान मूल कारणगत स्वरूप ईश्वरीय चित चेतना शक्ति का वह नित्यानंदमय आत्मभाव ही है जो अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ सर्वत्र अधिष्ठित व विभूषित है। सृष्टिगत उपर्युक्त तीनों आयामों में नाम रूपात्मक सिद्ध व्यक्त तथा क्रियात्मक साध्य अव्यक्त रूपों में अवस्थित व आभासित वह परमचित चेतना शक्ति ही ऋषि भाव के दिव्य अभिधान से अभिहित होती है। यह ऋषि भाव ही लक्षण या तद्गुण विशिष्ट जो व्यक्ति या आप्त पुरुष है उसमें ऋषि पदवाच्य रूप में व्यवहृत होती है। ऋषि भाव की इस अनादि परंपरा के कतिपय विशिष्ट स्वरूपों का विवेचन निम्नलिखित रूप से यहाँ निदर्शित है। सर्वप्रथम ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति एवं निर्वचनगत क्या उसका स्वरूप है यह यहाँ दिखला रहे हैं। ऋषि शब्द गत्यर्थक ऋषि धातु से इन प्रत्यय के साथ निष्पन्न होता है। यहाँ गति का अर्थ अप्रतिहत गति से है। ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्थाः ऐसा निरुक्त में आया है। अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार से उसका विवेचन है। इस न्याय के अनुसार गत्यर्थक समस्त धातु में यौगिकार्थ सामान्यार्थ रूप में ज्ञानपरक अर्थ की बोधक होती हैं। इस दृष्टि से ऋषि शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में स्थित समस्त सूक्ष्म अर्थों क्रियात्मक विज्ञान स्वरूपों का दृष्टा। ऋषि साक्षात्कृत धर्मा होते हैं अर्थात जिन्होंने अपने विशिष्ट तप से वेद विहित अत्यंत अपूर्व शब्द प्रमाण रूप धर्म और धर्म का स्वरूप है साध्य साधन इति कर्तव्यता रूप कर्म। साध्य यानी उद्देश्य एक होगा उसके लिए उचित जो साधन है और इति कर्तव्यता कहते हैं उस साधन को उपाय को अथ से इति तक निष्पन्न करने की व्यवस्थित प्रक्रिया। तो ये साध्य साधन इति कर्तव्यता रूप जो कर्म है वो ही धर्म पदवाच्य वेदों में मीमांसा आदि शास्त्रों में बड़े ही प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे धर्म रूप कर्म का अपरोक्ष दर्शन किया हो जिन्होंने वे ऋषि कहलाते हैं। यथा ऋषन्ति अवगच्छन्ति अमुष्मात् कर्मणः एवं अर्थवता मंत्रेण संयुक्तात् अमुना प्रकारेण एवं लक्षणं फलं विपरिणामो भवति इति ऋषियो मंत्रदृष्टारः। अर्थात वेद विहित विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद परक समस्त धर्मादिगत स्वरूपों को जो मनन रूप मंत्र विज्ञान के स्तर पर जानते हैं वे मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। जहाँ निरुक्त में इस प्रकार का निर्वचन प्राप्त होता है ऋषियों के क्रम में तो साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूवते अवरेभ्यो मंत्रान संप्रादु ऐसा करके है। यहाँ एक सामान्य चर्चा होती है कि मंत्रान संप्रादु का मतलब हुआ कि मंत्र भाग मात्र उन्होंने उपदेश से किया और उस समय फिर ना तो ब्राह्मण थे ना और कुछ था। लेकिन इस पर थोड़ा सा गंभीरता से अगर विचार किया जाए तो जो पहला वाक्य है साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूवुहु तो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि थे और ऋषि का निरुक्त का ही यह अभी हमने पढ़ा जो वचन है कि ऋषन्ति अवगच्छन्ति, पूर्ण रूप से जो जानते हैं क्या, अमुष्मात् कर्मणः एवं अर्थवता मंत्रेण संयुक्तात् अमुना प्रकारेण एवं लक्षणं फलं विपरिणामो भवति इति ऋषया। आप जानते हैं मंत्र ब्राह्मणात्मक जो शब्द राशि है वेद, उसमें मंत्र का लक्षण है, मीमांसा में किया गया है, प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः। प्रयोग यानी श्रौत याग के संदर्भ में क्रम है, प्रयोग यानी श्रौत याग के अनुष्ठान के समय समवेत अर्थ स्मारकाः, जो क्रिया हमें करनी है उस क्रिया के अर्थ का स्मरण कराने वाले जो वाक्य हैं वो ही मंत्र हैं। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः, तो ये तो मंत्रों का स्वरूप हो गया, लेकिन प्रयोग होगा तब तो मंत्र उनमें विनियुक्त होंगे, और प्रयोग का स्वरूप विधि कहाँ से आती है, ब्राह्मण भाग से, विद्यर्थवाद रूपो भागः ब्राह्मण भागः इति। वेद का ब्राह्मण भाग जो है उसके मुख्य रूप से दो विभाग हैं, विधि और अर्थ। विधि जो है वो यागादि जितने भी उपाय हैं उनका विधान करती है, और अर्थवाद जो है उसके आदि भौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का विवेचन करते हैं। तो विधि जब होगी, विधि ही धर्म पदवाच्य है, और धर्म के अंतर्गत मंत्र यानी प्रयोगानुष्ठान, प्रयोगानुष्ठान के साथ साथ फिर जब हम उस अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं तो मंत्र वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। अतः पारंपरिक जो हमारी परंपरागत वेदाध्ययन की और शोध की मनन की पद्धति है उसमें मंत्र ब्राह्मण ये दोनों, और ब्राह्मण में जहाँ इससे ब्राह्मण भाग से जहाँ पर हमें जो प्रयोग पक्ष है यज्ञ उनका श्रौति यागों का स्वरूप ज्ञात होता है, उसी में जो आरण्यक हैं वो प्राण विद्या का, और उपनिषद जो हैं वह आत्मतत्व का विवेचन करते हैं। ये सभी ब्राह्मण के अंतर्गत सामान्य रूप में आते हैं। फिर विषय विभाग की दृष्टि से मंत्र का समूह हो गया संहिता, यागादि अनुष्ठान का जो हाँ स्वरूप है विवेचित वो हो गया ब्राह्मण भाग, उसी में फिर प्राण विद्या का जो विवेचन है वो आरण्यक ग्रंथ, और उपनिषद जिसमें आत्मतत्व का विवेचन है। इस तरह से विषय विभाग की दृष्टि से विभाजन होता है। अतः यह जो निरुक्त में क्रम बतलाया है ऋषियों के अवबोध का, उसमें वह समग्र जो वेद है उसका आगे चर्चा और विवेचन का क्रम बन रहा है, उससे ही ज्ञात होता है कि ऋषि समग्र वेद का सूक्ष्म रूप में अवबोध करते हैं, उनके शुद्ध अंतःकरण में प्रकाशन होता है, और वह फिर परंपरा के क्रम से आवश्यकता अनुसार आगे प्रवर्तित होता है। ब्राह्मणगत एक उद्धरण के अनुसार ऋषि उन्हें कहते हैं जिनके तपोबल युक्त परम पवित्र अंतःकरण में ऋग यजु साम लक्षण रूप ब्रह्मवेद स्वयंभू अकृतक अपौरुषेय रूप से तत्वतः आविर्भूत हुए। ये वेदगत समग्र तत्व के दृष्टा ही ऋषि कहलाए, और यही ऋषियों का ऋषित्व है। उसके लिए जो वाक्य है वह तद्यदेनास्तपस्यमानान ब्रह्म स्वयं भभ्यानर्षत त ऋषियो अभवंस तद ऋषीणाम ऋषित्वमिति विज्ञायते। इति विज्ञायते का जहाँ ऐसा आता है तो वो किसी ब्राह्मण का वाक्य है, इस प्रकार से एक प्रसिद्धि है। वेदों के तत्वदृष्टा उपयुक्त लक्षण लक्षित ऋषि ब्रह्मर्षि या आद्यर्षि प्रत्येक कल्प के आदि ऋषि श्रुत हुए हैं, और साक्षात्कृत धर्माण ऋषियों बभूवुः के क्रम में जो ऋषियों का वर्णन आ रहा है वो ब्रह्मर्षि पदवाच्य हैं या आद्यर्षि हैं। आदि ऋषि का मतलब हो गया कि प्रत्येक कल्पात्मक ये सृष्टि है, तो कल्पात्मक सृष्टि में जो सर्वप्रथम वेदों का प्रकाशन जिनके पवित्र अंतःकरण में होता है वो आदि ऋषि आद्यर्षि या ब्रह्मर्षि ऐसा कहलाते हैं। औपमन्यु आचार्य हैं उनके दृष्टि से, औपमन्यु आचार्य के अनुसार स्तोमान ददर्श अर्थात स्तोमान माने मंत्रों का दर्शन जिन्होंने किया, वह और वह दर्शन तारक ज्ञान के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है, अतः उनको ऋषि कहा जाता है। इस क्रम में सीधे सीधे ऋषि शब्द ऋषि गतौ से है, और जो गति है गत्यर्थक जो ऋषि शब्द है या जितने भी गत्यर्थक जितनी धातुएं हैं वह शास्त्र की शास्त्री विवेचन के क्रम में और यौगिकार्थ क्रम में एक बड़ी बात आवश्यक होता चला जाता है। चाहे वेदों की हम बात करें चाहे अन्य वेदों में वर्णित जो विषय हैं, चाहे वह विराट पुरुष रूप साकार ब्रह्म की बात हो चाहे निराकार निर्विकार ब्रह्म की बात हो, सब सूक्ष्म के क्रम में अपने आप हृदयस्थ अनुभूति के क्रम में आता जाता है। यह ऋषि भाव भी भाव शब्द के भाव शब्द जो है वो व्यापकता का बोधक है। आप सब जानते हैं विज्ञ हैं भाव अर्थ में प्रत्यय और करण अर्थ में प्रत्यय वेद शब्द ही है। वेद विद धातु से भाव अर्थ में जब प्रत्यय होता है घें तो वो पूर्ण ज्ञान का बोधक होता है। पूर्ण ज्ञान वेद माने पूर्ण ज्ञान, और जब करण में प्रत्यय हो जाता है तो वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपायाः येन स वेद साधन यागादि रूप साधन। तो कहने का मतलब ये है वेद अपने में साध्य भी हैं साधन भी हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कल्प कल्पांतर के रूप में यह जो ऋषि भाव है साधन रूप में भी हमें दृष्ट होता है साध्य रूप में भी दृष्टि होता है। इसीलिए यह ऋषि भाव अपौरुषेय है अनादि है नित्य विभु व्यापक रूप में परमेश्वर की उस चेतना शक्ति के रूप में व्यवहृत है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हम में आप में सब में विराज रहा है। ऋषियों द्वारा अब नई हेडिंग के क्रम में है ऋषियों द्वारा कल्प कल्पांतर रूप ब्रह्मर्षि भाव की परंपरा। वेदों के अनुसार जो ये ऋषि भाव है ये कोई इसी कल्प में कुछ ऋषि हुए और उन्होंने वेदों का प्रकाशन किया ऐसा नहीं है। प्रत्येक कल्प के आदि में ब्रह्मर्षि जो हैं वह उनका आविर्भाव होता है और उनके पवित्र अंतःकरण में वह ज्ञान राशि प्रकाशित होती है। उपर्युक्त साक्षात कृत धर्म स्वभाव ब्रह्मर्षि प्रत्येक कल्प के आदि में पूर्व कल्प के समान ही ऋषि परंपरा के अंतर्गत सृष्टि एवं वेद विद्या का प्रवर्तन करने वाले श्रुत हुए हैं, यथा एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है सहस्तो माह सह छंद स आवृत सह प्रमारेखया सप्तदैव्या पूर्वेखा पंथा मानो दृश्य धीरा अन्वाले भीरे रथियो नरश्मीन। देखिए बड़ा ही प्रचलित मंत्र है, कितना गूढ़ विवेचन कर रहा है। सहस्तो माह सह छंद स आवृत सह प्रमा रेखया सप्त दैव्या सात ऋषि आद्यर्षि ब्रह्मर्षि सात आगे चर्चा आएगी वह जब आविर्भूत होते हैं तो अपने साथ सहस्तो माह स्तोमान मंत्रान ददर्श औपमन्यु के निर्वचन के क्रम में स्तोमाने मंत्र मंत्र स्वरूप का के साथ वह आविर्भूत हुए। सह छंद स छंद जितने हैं और छंदांसी छादनात् छंदों का केवल जो है वो जो अक्षरात्मक पादात्मक विभाग है उसमें किसी कविता या श्लोक के रूप में वेद रचे गए ऐसा नहीं है। वो छंद जो है जैसे एक विद्युत धारा से आवृत कर दिया जाए वह विद्युत धारा ही छंद पदवाच्य ऐसी आती, सह छंदस आवृत। आवृत शब्द ये देखिए इतना महत्वपूर्ण है, बड़ा ही एक चर्चा का और संदेह का विषय है कि ये कर्म जो है कहाँ से आ गए, जो हम कर्म करते हैं वो कहाँ से, कर्मों की उत्पत्ति कब से है, क्या है, वो भी अनादि। आवृत यानी कर्म, सह आवृत कर्म के साथ है, जितने भी ये कर्म हैं नित्य नैमित्तिक काम्य सब सूक्ष्म रूप में ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित हुए। सह प्रमा ऐसे ही नहीं हो गए, शब्द प्रमाण रूप जो प्रमाण है उसके साथ उत्पन्न हुए ये ऋषि जो थे, प्रमाणों के साथ, कर्म विज्ञान के साथ, छंदो विज्ञान के साथ और मंत्र विज्ञान के साथ आविर्भूत हुए। और कैसे हुए, कैसे फिर उन्होंने जो पूरी सृष्टि का जो संविधान है, मैं तो कहता हूँ वेद सृष्टि के संविधान, जैसे किसी भी देश का व्यवहार संविधान के साथ होता है, सारी सृष्टि का जीवन का जो व्यवहार है, अंतः बाह्य स्वरूप है, वह वेद रूप संविधान के रूप में जो ईश्वरीय यह वाणी है उसके रूप में प्रकाशित होता है। तो कह रहे हैं पूर्व कल्प में जैसे आद्य ऋषियों ने इस पूरी सृष्टि और जीवन के क्रम को प्रकाशित किया था उसी के अनुसार, वैसे ही इस वर्तमान कल्प में वह सृष्टि का स्वरूप ऋषियों के मन में आविर्भूत हुआ। समय हो तो थोड़ा संकेत कर देंगे। पूर्वेषाम पंथाम अनुदृश्य, पूर्वेषाम माने पूर्व कल्प गतानाम ऋषीणाम, पूर्व ये निरुक्त का वचन है, यास्क का वचन है, सायण इसका विवेचन करते हैं, सब यहाँ मैंने दिया है, शास्त्रीय है, कोई मन मानिक या अपने मन की कपोल कल्पित कोई भी बात नहीं है। पूर्वेशाम पंथाम अनुदृश्य धीरा अन्वाले भिरे रथ्यो न रश्मि न, बड़ी कुशलता से इसका पुनः उन्होंने प्रकाशन किया, जैसे कोई एक रथी जो है वह घोड़ों के लगाम को जितना उसे आवश्यकता है गंतव्य तक जाने के लिए कभी ढीलता है कभी खींचता है, पूर्ण नियंत्रण के साथ, पूर्ण यहाँ नियंत्रण का मतलब है पूर्ण बोध के साथ उन्होंने इसका प्रवर्तन किया। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में श्रुत यह ऋषि सृष्टि प्रतिपादिका ऋग ऋग मंत्र है, एतद अनुसार प्रजापति रूप परम देव से संबद्ध प्रजापति प्राणाभिमानी प्राणों के अधिष्ठाता सात ऋषि जो हैं उनको गिनाया गया है, भरद्वाज कश्यप गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि तथा जमदग्नि संज्ञक सात ऋषियों ने सृष्टि यज्ञ की सर्जना प्रवर्तना की। सृष्टि की यह अनुपम परिकल्पना उन्होंने पूर्व कल्प में प्रजापति के दिव्य प्राणों के अधिष्ठाता रूप में उत्पन्न ऋषियों के विधि विधान तथा अनुशासन के अनुसार वैसे ही संपन्न की, जिस प्रकार एक कुशल रथी रथ चालक अपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त करने के लिए रथस्थित अश्वों की रश्मियों लगाम को यथेच्छ रूप में नियमित करता है। ये सभी ऋषि स्तोम मंत्रों के दिव्य ज्ञान, गायत्री आदि छंदों के दिव्य ज्ञान तथा आवृत कर्म विज्ञान के दिव्य ज्ञान से संपन्न होने के साथ ही शब्द रूप प्रमाण के साक्षात प्रतिमान थे। अब ऐसी चर्चा हो रही थी डॉक्टर साहब से, ऊपर दो मिनट की चर्चा में विद्वानों से चर्चा होती है तो अपने आप शास्त्र की चर्चा हो जाती है, उसका स्वरूप बन जाता है। तो यही हो रहा था भाई, ये ऋषि जो हैं गौतम भरद्वाज हैं अत्रि आदि हैं, ये आप नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है पूर्व कल्प के और अनादि और अपौरुषेय रूप में इनकी सत्ता। जी हाँ, नाम तो है, सारा सारी सृष्टि ही नाम रूपात्मक जगत के क्रम में है, ब्रह्म भी एक नाम ही है, जब हम कहते हैं ब्रह्म तो एक नाम हुआ ना। लेकिन ये सारे जितने वेद में विहित पक्ष हैं वह यौगिकार्थ रूप में स्वीकृत किए जाते हैं, यौगिकार्थ तात्विक रूप में, व्यवहार में तो स्थूल रूप, ये जो प्रसिद्ध रूप है रूढ़ अर्थ, वो गृहित होता है, लेकिन जब हम तत्व चिंतन करेंगे, कोई भी नाम रूपात्मक पूरा जगत है, इस जगत का जो व्यवहार है तत्व चिंतन के क्रम में हम जब चलते हैं, तो क्या ये जो स्थूल शरीर है ये व्यवहार करता है? तो हम जाते हैं और गूढ़ता में तो पता लगता है कि ये स्थूल शरीर अपने आप में कुछ नहीं करता, इसके भीतर जो चेतना शक्ति है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अहंकार का मतलब घमंड नहीं, अहंकार जो अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अहंकार वो सात्विक जो अहंकार का स्वरूप है। सत्य आत्मबोध अहंकार कहलाता है, नॉलेज ऑफ ट्रू एग्जिस्टेंस, हम क्या हैं इसका सही सही जो बोध है, ये जो अंतःकरण की चार वृत्तियों में अहंकार है वो उसका वो स्वरूप है। और अगर हमने ये जान लिया कि हम वस्तुतः क्या हैं, तो फिर जो वह है वही हम हो जाते हैं। और ये जो लोक व्यवहार में अहंकार है, ये तामसिक वृत्ति वाला है, संकुचित, हमारे पास एक मकान है, 10 मकान हैं, 4 गाड़ियां हैं, सीमित जो पदार्थ हैं उसका जो आत्मबोध कि ये मेरा है, ये संकुचित तामसिक अहंकार हुआ। सात्विक अहंकार में सारी सृष्टि ही मेरी और सारी सृष्टि में मैं ही, ये जो व्यापक बोध है यही सात्विक अहंकार का बोध है। तो यह जो क्रम है इसी रूप में इन सभी को लेना है। शतपथ ब्राह्मण में जितने हैं, गौतम हैं, भरद्वाज हैं, अत्रि, सब का निर्वचन दिया हुआ है, और वह निर्वचन वही सात्विक जो व्यापक अर्थ है उसके साथ है, इसलिए ऐसा संशय ना हो कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं नित्य विधि व्यापक। प्रत्येक शब्द की 3 जो है स्थितियाँ अवस्थाएँ हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। रूढ़ जो प्रसिद्ध है वो लोक व्यवहार में आवश्यक है, उसी से व्यवहार होता है। योग रूढ़ में हम और उसके भीतर जो उसका प्राणात्मक सत्ता है, और फिर यौगिक रूप में जो व्यापक उसकी सत्ता है उसके साथ जुड़ते हैं, और ऐसे जब हम देखते हैं तो फिर जीव भी नित्य भाव में होता है। और वेदों के अनुसार तो कभी जीव का विनाश है नहीं, ये स्थूल शरीर ही छूटता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर की बात है, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले, 2010 का ये है, इंग्लैंड में जितने भी भारतवंशी हैं, तो महाराज घई महाराज करके एक 85 ईयर्स ओल्ड वो हैं, समस्त भारतवंशियों की तरफ से उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपील की। किस चीज़ की अपील? हमें भारतीय परंपरा के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार का अधिकार मिले। पेपर में सब आया था। हाई कोर्ट में अपील हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि, और वहाँ की एक जो है लेडी स्कॉलर थी इंग्लैंड की, उन्होंने कह दिया कि ये जो अंत्येष्टि संस्कार है ये ऐसे ही विश्वास है, कोई संस्कार नहीं। संस्कार और विश्वास में अंतर होता है। विश्वास तो वो होता है 5, 10, 50 लोग कोई एक चीज़ मान के करने लगें, शास्त्रों में उसकी चर्चा ना हो। संस्कार वो होता है जिसकी शास्त्रों में चर्चा हो और फिर वो लोक व्यवहार में हो। तो अंत्येष्टि संस्कार, तो हाई कोर्ट ने, इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने ये कहा, देखिए वेद पर चर्चा है, वेदों का पूरे विश्व में वेद संदेह रहित रूप में ज्ञान और विज्ञान की शब्द राशि के रूप में जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा स्वीकृत हो चुका है। तो हाई कोर्ट, इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने कहा कि आप यदि वेदों से प्रमाण दे सकें कि अंत्येष्टि संस्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम इसको विचार करेंगे। संक्षेप में कहूँगा, पूरे भारत वर्ष में वो अपील वहाँ से उन्होंने की, उस समय में था वेद विभाग में, वहाँ भी आई, वीसी ने मेरे पास भेज दिया क्योंकि वेद से संबद्ध था। मैंने विचार किया, कहा ठीक है मैं वेदों से प्रमाण दूंगा। वहाँ से वकील आए इंग्लैंड से, 3 साल तक ये चला। उन्होंने कहा सोच समझ के कीजिएगा, वो हाई कोर्ट है, अगर गलत हुआ तो आप पनिशमेंट भी तुरंत मिलेगा। बिल्कुल प्रामाणिक जो सामग्री है वो उपलब्ध सब भेजी। हाई कोर्ट ने वेदों में जो प्रामाणिक अंत्येष्टि संस्कार के ज्ञान विज्ञान परक जो स्वरूप हैं उनको स्वीकार कर लिया, और रॉयल कोर्ट है हाई कोर्ट से भी बड़ा, वहाँ केस गया और आज की डेट में 2010 में ही ये डिक्री हो गई। वहाँ के भारतवंशियों को जो भाव परंपरागत अंत्येष्टि संस्कार का अधिकार मिल गया वेदों के प्रमाण के आधार पर। यह है वेदों की महत्ता। और संदर्भ ध्यान में आ गया इसलिए मैंने प्रस्तुत कर दिया, आगे मैं संक्षेप में बढ़ता हूँ। तो योग का अर्थ रूप में हमें लेना है सारे जितने नाम हैं। तात्विक चिंतन में ऋषि भाव की चर्चा हो रही, फिर वो जिस व्यक्ति में प्रकट होता है वो ऋषि प्रतिवाच्य है, ये तो अपने आप आता है। अब ये विचार है, क्या जो आद्यर्षि हो गए वही ऋषि कहलाएंगे, या उसके बाद जो और ऋषि हैं वेदों में वर्णित क्या उन्हीं को ऋषि कहेंगे, और यह ऋषि पद क्या ईश्वर प्रदत्त है, कैसा है? ऋषि जो पद है, ऋषि जो भाव है, वो कोई भी अर्जित कर सकता है। ऋषि पद तपोबल से सभी के द्वारा प्राप्तव्य। एक चीज जान लीजिए, हर चीज का एक अपना नियम है, व्यवस्था है। यौगिकार्थ रूप में, व्यापक रूप में, यूनिवर्सल एस्पेक्ट में जब हम वेदों की चर्चा करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं है, ना जातिगत भेदभाव, ना देशगत भेदभाव और ना कालगत भेदभाव। सबके लिए ज्ञान विज्ञान रूप ये शब्द राशि है, किसी के लिए कोई भेद नहीं। हाँ, साधन के रूप में किसके लिए क्या आवश्यक है ये अलग विषय है। 10 लोग बुखार से, फीवर से पीड़ित हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिकल स्टोर में 50 तरह की दवाइयां हैं फीवर की, डॉक्टर 10 लोगों को 10 अलग अलग दवा लिखता है। अब अगर हम लोग इस पर विचार करने लगें जो चिकित्सक है उनसे कि भाई आप तो ये गड़बड़ी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनको दूसरी दवा लिखी, इनको दूसरी, उनको तीसरी, उन्हें चौथी, ये क्या भाई, सबको आप एक दृष्टि से देखिए, सबको एक दवा दीजिए। क्यों? बुखार जो फीवर है एक रोग है, सबको वही एक रोग हुआ है, एक दवा सबको लिखिए, अलग अलग क्यों लिखते हैं? प्रकृति के अनुसार शरीर की अलग अलग प्रकृति है, उसके अनुसार ही दवा भी अलग अलग दी जाती है। उद्देश्य क्या है? स्वस्थ होना। अगर स्वस्थ होना उद्देश्य है तो हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे कि ये दवा क्यों है और वो दवा क्यों है। जो चिकित्सक ने लिखी उससे हम लेते हैं, स्वस्थ होते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सफल होते हैं। और अगर इस चर्चा में ही हम उलझ जाएं कि नहीं साहब ये दवा तो हमें दूसरी लिखी, उन्होंने दूसरी लिखी, तो रोग जहाँ का तहाँ बढ़ता चला जाएगा, जो हमारा लक्ष्य है हमसे दूर होता जाएगा। साधन में भेद है, साध्य में कभी भेद नहीं है। पुरुषार्थ चतुष्टय सभी के लिए समान रूप से सार्वकालिक रूप में स्वीकृत हैं, मान्य हैं, प्राप्तव्य हैं। इसलिए ऋषि पद भी सभी के द्वारा प्राप्तव्य। उसके लिए जो अनुकूल प्रयास है, जो भी करेगा ऋषि पदवाची वह होगा, कहीं इसमें भेदभाव नहीं। ऋषिपद वैधान सर्वज्ञता के परम भाव का बोधक है और तपोबल विधि सम्मत के माध्यम से इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। वेदों में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यह परम भाव स्वयं के सत्प्रयास तथा ईश्वर की अनुकंपा से अधिगत होता है। इससे संबद्ध दो उद्धरण यहाँ निर्दर्शित हैं। हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे उस आराधना रूप पवित्र आचरण से हमें वो शक्ति देते हैं, और कभी कभी हम जो उसका सही प्रयास है उसके द्वारा स्वयं उसको अधिगत कर लेते हैं। दो उदाहरण हैं, संक्षेप में पढ़ रहा हूँ। निरुक्त में ही चर्चा आई है, कहते हैं देवापि और शंतनु दो भाई थे। ये भी दिया है, पूर्व कल्प की बात है, वहाँ पूर्व कल्प में ऐसा हुआ, ये दिया है। देवापि और शंतनु ऋष्टिसेन राजा के पुत्र थे। देवापि बड़े थे, शंतनु छोटे थे। राज्याभिषेक का क्रम आया तो जो छोटे भाई हैं शंतनु, उन्होंने बलात् अभिषेक करा के वो राजा हो गए। देवापि ने जब यह देखा तो उनके मन में एक भाव आया, मैं इस राज्य के राजा के पद की अपेक्षा क्यों ना सारी सृष्टि का जो अधिपति है उस भाव को प्राप्त करूं। ऋषि भाव प्राप्त करने के लिए देवापि तप करने लगे, और तप करते करते इतना तेज उनमें आया कि वह ऋषि भाव का जो सर्वदर्शन का, ऋषि भाव माने व्यापक रूप में पूरी सृष्टि के विज्ञान और जीवन के विज्ञान का अधिकारी बनना, जैसा चाहे वैसे सृष्टि को कर सकता है, जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, ये है ऋषि भाव, संपन्न हो गया। इधर क्योंकि संतनु ने अन्याय से राज्यपद ले लिया था, कहते हैं 12 वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई, अकाल पड़ गया। पुरोहित पहले होते थे, आजकल पुरोहितों का भी स्वरूप संकुचित हो गया। पुरोहित अग्नि के लिए, पुरोहित का शब्द ऋग्वेद का प्रथम मंत्र आप जानते हैं ना, पुरोहितम अग्निमीले पुरोहितम, पुरः अग्रे स्थित्वा हितम इच्छति इति पुरोहितः, जो आगे माने मार्गदर्शन करे कैसे कल्याण होगा वो पुरोहित। तो पुरोहितों ने और लोगों ने सलाह दी कि भाई अन्याय से राज्य पद लिया है, देवापि को बुलाकर राजपद दो तो राज्य में वृष्टि होगी, सुख शांति होगी। संतनु को भी बात समझ में आई, वो गए, लेकिन देवापि तो उस परम पद पर अधिष्ठित हो चुके थे, उनका भाई अब मुझे कोई अभिलाषा ही नहीं है किसी राज्य की, लेकिन राज्य में अकाल है और ऋषि केवल आत्मसुख और आत्मसंतुष्टि का जो है वह अध्येता या आचरण करता नहीं है, पूरी सृष्टि की जो सुख शांति की स्थिति है वो उससे जुड़ी रहती है, उनका मैं आकर यज्ञ करूंगा और यज्ञ से वृष्टि, उन्होंने आकर यज्ञ किया, ये यज्ञ विज्ञान है, भरपूर वृष्टि हुई और फिर वो अपने यथास्थान चले गए। ऋषि भाव को देवापि ने अपने परम तप के प्रयास से प्राप्त किया, प्राप्तव्य। एक दूसरा उदाहरण है, उसमें अग्नि का ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, अग्नि को ऋषि कहा गया है। ऋषि क्यों है अग्नि? इसलिए है कि जो अग्नि, फिर आप तेजस तत्व, जब अग्नि की हम बात करते हैं तो एक ज्वाला में अग्नि है पृथ्वी स्थित, अंतरिक्ष में विद्युत रूप है और द्युलोक में आदित्य रूप है, और इसके भी और आगे व्यापक क्रम में जाइए जो तेजस तत्व है, फायर एलिमेंट, वही अग्नि पदवाच्य है। यौगिकार्थ में जाइए तो अग्नि का आया है यौगिकार्थ रूप में, और ऋषिकृत शब्द आया है। वह जो सत्कर्म के अनुयायी हैं उनके तपोबल के क्रम को देखते हुए उन्हें ऋषि भाव में स्थापित करते हैं अग्नि, ऋषिकृत दर्शनकारी, ऐसा मंत्र है, मंत्र में पढ़ देता हूँ। इमामग्ने सरणिं मीमृशो न इममध्वानं यमगात दूरात् आपिप्यता प्रमतिस्सोम्यानां भ्रमिरस्ऋषिकृत मर्त्यानां। ऋषिकृत अग्नि जो है ऋषिकृत है, ऋषि भाव में प्रतिष्ठित करने वाला वह परम देव है। अब ऋषि भाव का आधिदैविक स्वरूप है, वो जो ऋषि भाव में आदि कल्प के आदि में ब्रह्मर्षि के रूप में जो वह वेद विज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर आधिदैविक स्तर पर प्राणात्मक जो सत्ता है, देव भाव जो है वो प्राणात्मक सत्ता है, जो हमारा वाइटल फोर्स है उसका जो डिवाइन एस्पेक्ट दिव्य भाव है वही प्राणात्मक सत्ता सारे में विचर रही है। उस रूप में ऋषि पूरी सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब ये आधिभौतिक स्तर पर है, द्रव्यम देवता त्यागो यागा, ये आधिभौतिक रूप में है, कोई द्रव्य होगा, आहुति होगी, देवता का उद्देश्य करके पवित्र अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये लौकिक यज्ञ का स्वरूप है। आधिभौतिक आदिदैविक यज्ञ के स्वरूप में एक देखिए कैसा व्यवस्थित क्रम है, बहुत्व द्वित्व एकत्व। लोक व्यवहार में जो यज्ञों का स्वरूप है वो बहुत्व रूप है, द्रव्यम देवता त्याग तीन पक्ष हैं और तीन में बहुत्व आ जाता है, फिर उसके आगे चाहे जितना जाइए लेकिन प्लुरलिटी जो है वो तीन में आ जाती है ना। लोक व्यवहार में बहुत्व है, द्रव्यम देवता त्यागो यागा। अब देवताओं ने देवता यज्ञ करते हैं, बड़ा सब ये सब है, कात्यायन श्लोक सूत्र के आदि में आया है कि देवता लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं, क्योंकि अगर वो यज्ञ करने लगेंगे तो किसको आहुति देंगे, क्योंकि यहाँ तो देवता को उद्देश्य करके आहुति देते हैं। सब भौतिक यज्ञ के लिए ये है जो लोक व्यवहार में करते हैं ना, तृत्व जो है या बहुत भौतिक जो यज्ञ है उसके लिए है, जो आधिदैविक स्तर पर यज्ञ है उसमें तृत्व से द्वित्व में स्थिति बन जाती है, यानी देवता लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें द्वित्व का भाव है, तृत्व का नहीं है। प्रमाण प्रमाण है, ऐत्रेयारण्यक भी कहा है, सैष वाच चित्तस्योत्तरोत्तरिक्रमो यज्ञः। अभी हमने कहा था आदिभौतिक में यज्ञ का स्वरूप कैसा है, तीन है ना, द्रव्य देवता याग। अब आदिदैविक में आइए, वाचः चित्तस्य उत्तरोत्तरिक्रमो यज्ञः। आदिदैविक स्तर में द्वित्व रूप में यज्ञ होता है, वाणी है वाक तत्व और चित्त चेतना शक्ति, इसका एक दूसरे पर लेयर चयन याग है ना, चयन याग में जो है वो एक दूसरे पर जो लेयर होता है, ये आधिदैविक चयन याग है। चित्त शक्ति चेतना शक्ति का और वाक तत्व का परस्पर एक दूसरे के साथ जो समन्वय है यही आधिदैविक यज्ञ है। ये यज्ञ देवता लोग हमेशा करते रहते हैं, और मंत्र में पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। साध्य देव क्रियात्मक देव, प्राणात्मक सत्ता पूरी सृष्टि में व्यापक रूप से प्रवर्तित है, तादृशाः देवा एव ऋषयः सन्ति, आया है ऋषयः वहाँ दिया है, इसलिए मैं इसका मंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। ऋषि हैं ये जो प्राणात्मक जो देव हैं वो ऋषि पदवाच्य हैं, ऋषयः क्यों, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, सोमात्मक जो सारी सृष्टि है नाम रूपात्मक जगत में, दो ही तो पदार्थ हैं इस सारी सृष्टि में, अग्नि और सोम, अग्नि जो है भोक्ता है, सोम जो है भोग्य है, ईटर एंड एडिबल। पूरी सृष्टि में देख लीजिए, चाहे अपने शरीर में देख लीजिए, चाहे किसी में देख लीजिए, दो ही तत्व हैं। एक स्थिति निरुक्त में जो छह आए हैं, भाव विकार जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, फर्स्ट मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन जायते वहाँ से शुरू होता है, गर्भ की प्रथम क्षण की अवस्था जायते, उत्पन्न हुआ अस्ति, दो चार दिन में स्पष्ट होते हैं हाथ पांव चेहरा किस पर गया, विपरिणमते, फिर वर्धते शुरू होता है, शारीरिक वृद्धि मानसिक वृद्धि और जो भी ज्ञान विज्ञानमयी संपत्ति वो अर्जित करता है भौतिक हो या आदि सब उसमें आता है, वर्धते में चौथी अवस्था। एक समय तक तो शारीरिक वृद्धि चलती है, 35, 50, 40, 50 के बाद शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। जीवाणु रोगाणु शरीर में हैं, जीव जीवाणु जब प्रबल हैं तो हम स्वस्थ हैं, रोगाणु जब प्रबल हो जाते हैं तो जीवाणुओं को खाने लगते हैं, और जब जीवाणु प्रबल रहते हैं तो रोगाणु अधीन रहते हैं। जब रोगाणु भोग्य होगा और जीवाणु भोक्ता रूप में होगा, हम स्वस्थ होंगे शारीरिक मानसिक और आत्मिक रूप में। आप जानते हैं पूरे विश्व में आज की डेट में जो ऑप्टिमल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, पूर्ण स्वास्थ्य का, स्वस्थता का जो कॉन्सेप्ट है, तीन उसके क्रम बन गए हैं। पहले केवल फिजिकल और मेंटल फिटनेस माने स्वस्थ, साइकिक फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस भी जरूरत है, आत्मज्ञान, ये होगा तब फिटनेस। ये वैश्विक स्तर पर आज की डेट में चल रहा है। तो देवों ने यज्ञ किया, द्वित्व भाव में आ गए, बहुत से द्वित्व में आए। यज्ञ ने यज्ञ में एजेंट है, सोमात्मक द्रव्य है, अग्नि तेजस तत्व रूप साध्य है, और यही तेजस तत्व रूप साध्य जब और अधिक होता है तो सोम उसमें अंतर्भूत हो जाता है, केवल एक बचता है। उपनिषद का जो विवेचन है, आत्मतत्व विवेचन, ब्राह्मण, मैंने कहा था ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये तीन भाग हैं, मंत्र भी ले लीजिए उसी में। आदि भौतिक यज्ञ में बहुत्व त्रित्व, आदिदैविक यज्ञ में द्वित्व, केवल प्राणात्मक सत्ता, पूरी सृष्टि में वो प्राण शक्ति है और दृष्टा देखने वाला द्वित्व में है, उसी को बढ़ाते बढ़ाते दोनों जब अंतर्भूत हो गए तो एकात्म भाव में जाते हैं, और वह भाव अपने आप में पूर्ण भाव है। इधर उधर की बातें थोड़ा बीच बीच में याद आते ही कह दे रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ समय का जो है, मुझे पढ़ के कहने की आदत नहीं है, मैं तो जहाँ भी बोलता हूँ बस एक कोई विषय हुआ वह बोलता चला जाता हूँ, गुरुजनों से जो मिला है उसी में आनंद आता है। जब पढ़ने में लगते हैं तो सीमित हो जाता है, फिर भी एक व्यवस्था है, एक नियम है, तो उसके अंतर्गत अब देखिए। तो ये यज्ञ ने यज्ञ में जन्म, जो प्राणात्मक सत्ता है आधिदैविक यज्ञ उसका, उसमें जो ऋषियों का कार्य है, आधिदैविक ऋषि प्राणात्मक हैं, प्रणवाक्षर रूप वेद के अष्टादश विद्या के क्रम में प्रवर्तन की ऋषि परंपरा, इसमें मैंने वही दिखाया, साक्षात्कृत धर्मा हो गए, फिर वो ते औरेभ्यो साक्षात्कृत धर्मभ्यः मंत्रान संपादु, उसके आगे कहा ग्लायंतो अवरे इमं ग्रंथम समामनाशिषु वेदंच वेदांगानि च, कहने का मतलब है कि प्रणवाक्षर रूप जो वेद का मूल स्वरूप ही, एक चर्चा सामान्य जनों में अक्सर हो जाती है, साहब ऋग्वेद जो है पांच वॉल्यूम में, फिर यजुर्वेद, सतपथ ब्राह्मण आइए पांच वॉल्यूम इतना बड़ा बड़ा, फिर चारों वेद के ये सब जो ब्रह्मर्षियों ने ये इतना सब जो है एक साथ कैसे जो है सब ले लिया और कैसे इतना सब पढ़ाया शिष्यों को, गुरु शिष्य परंपरा है ना वेदों की। प्रणवाक्षर जो ओंकार रूप है वेद का, समष्टि रूप, एकाक्षर रूप, सब इसी में समाहित, ये विस्तार कालांतर में इसका अष्टादश विद्या के रूप में विस्तार होता है। चार वेद, और जब वेद कहते हैं तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर छह वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेद जो मूल है उसको समझने के सहायक शास्त्र, फिर इन छह वेदांग शास्त्रों को समझने के लिए चार उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और फिर चार उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद पूरे चिकित्सा, ये चिकित्सा तीनों स्तर की, आदि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक। धनुर्वेद केवल धनुष बाण की विद्या नहीं, पूरा मिलिट्री साइंस, धनुर्वेद माने पूरा मिलिट्री साइंस, चाहे वो सेटेलाइट के रूप में हो चाहे जिस रूप में, धनुर्वेद का विषय। गांधर्व वेद नृत्य, गीत और गायन और वादन, और इस नृत्य गीत गायन वादन में जो लौकिक है, इसके मूल में आदि दैविक जो स्वरों की सत्ता है, जो अत्यंत संगीत शास्त्र में निष्ठ आचार्यगण हैं, चाहे वो तानपुरा मिलाएं, चाहे वो सितार मिलाएं, एक स्वर ध्वनित होता रहता है, वो अव्यक्त है, सबको सुनाई नहीं देगा जो अभ्यास ने वो सब आता, वो उसके साथ वो मिलाते हैं। हारमोनियम के साथ मिलाना जो है ये तो बहुत ही सामान्य स्तर का है, वह स्वर जो चल रहा है, अब आ गई आगम में नादात्मक सत्ता, वो स्वर चल रहा है, उस स्वर के साथ इन तारों को जब मिला लेता है वादक, और गायक जब अभ्यास से अपनी वाणी को उसके साथ जोड़ के गाता है, तो फिर तानसेन की बात आती है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की बात आती है आज, क्योंकि मैंने उनका दर्शन किया है। मुसोलनी कहते हैं था, उसको नींद नहीं आती थी, रोग था, गए, उसने कहा कि अगर तुम मुझे सुला दो तो जो चाहो दे दें। ईश्वर का स्मरण किया उन्होंने, गुरु का स्मरण किया और गायन किया, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर मुसोलनी सो गया, घंटों सोया रहा, उठा कहा न जाने कब से मुझे नींद ही नहीं आती। वह जो दिव्य नादात्मक स्वर की सत्ता है, उसके साथ जब गायक वादक नर्तक अपना लौकिक क्रम जोड़ लेता है, तो वही फिर दिव्य भाव बन जाता है, और वही फिर जो अभीष्ट है उसको देने वाला होता है। मैं था अष्टादश विद्या के क्रम में, तो गांधर्व शास्त्र, और चौथा है जो उपवेद है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जो 64 कलाएं हैं उनका ये शास्त्र है, 64 कलाओं का संग्रह अर्थशास्त्र, उसमें सब आ जाता है। वास्तु है पक्षियों की, पशुओं की, बोली का विज्ञान है, ये सारा, ये सब विज्ञान है। मिलिट्री में पशु पक्षियों की बोली का विज्ञान स्वीकार करके और व्यवहार होता है, उधर नहीं जाऊंगा, उदाहरण प्रामाणिक हैं, समय अधिक हो रहा है, मैं जो है अब संक्षेप करता हूँ। इस तरह से प्रणवाक्षर रूप जो, और ये भी प्रणवाक्षर हम जो कहते हैं ना ओम, ये प्रणवाक्षर का मूल स्वरूप नहीं है। जो ये वाक् तत्व है, शब्द ब्रह्म रूप वाक् तत्व, इसकी चार स्तर हैं, चत्वार, ऋग्वेद का मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमता परिमता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीण निहितानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। वाक् तत्व के चार स्तर हैं, पद माने चार, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। तुरीय शब्द दोनों अर्थ में आता है, नीचे से ऊपर गिनती करेंगे तो तुरीय जो है ब्रह्मवाची हो जाता है, लेकिन चतुर्थ तुरीय शब्द चतुर्थवाची है, तो जब ऊपर से हम चर्चा करेंगे तो तुरीयम वाचो, जो ये हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, वैखरी माने स्वर अलग हैं, वाउल्स कॉन्सोनेंट्स व्यंजन अलग हैं, उनका संयोजन है, उसी को हम बोल रहे हैं, लेकिन इसके गूढ़ रूप में सूक्ष्म रूप में तीन स्तर वाणी के हैं। मध्यमा पश्यन्ति परा, मध्यमा में अवबोध है, किसी चीज़ को हम जान लेते हैं, मन में जो हमें बोध हुआ वो मध्यमा का है, हृदय से उसका संबंध। अवबोध के लिए काल की अपेक्षा नहीं है, एक कोई बड़ी कहानी नावल लिखने के लिए जो भी है, चाहे नाटककार हो चाहे कहानीकार, उसके मन में पूरा एक साथ आ जाता है, लेकिन जब लिखने बैठता है तो महीनों लग जाते हैं। सूक्ष्म को स्थूल में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो काल का अत्यंत अधिक समय उसके साथ जुड़ता है। मध्यमा के क्रम में समय की कोई एक क्षण में पूरा गृहित होता है, ये तो अनुभव का विषय है। और इसके आगे जाइए, पश्यन्ति ऋषि भाव के साथ जुड़ा है, ऋषि भाव पश्यन्ति, इसीलिए तो दर्शन शब्द आया, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, ऋग्वेद कह रहा है, उतत्वपश्यन्न ददर्शवाचम् उतत्वश्रृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ते उशति सुवासा। वाणी को देखने की बात, क्या ही पागलपन है। वाणी देखने की बात है कि सुनने की? वाणी सुनी जाती है ना। मंत्र क्या कह रहा है? उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम्। कोई एक वाणी को देख के भी नहीं देख पाता। यहाँ जो पश्यन है, दृश्य धातु के साथ जुड़ा दर्शन, और दर्शन शब्द जो है वह अनुभूति से, रियलाइजेशन का विषय है, बोलने का विषय नहीं है। तो पश्यन्ति ऋषभ, पूरी सृष्टि में वो प्राणात्मक सत्ता एक रूप में, ये जो प्राणात्मक सत्ता विविध रूप में है उसका मुख्य अधिष्ठाता एक है इंद्र, उसी को कहा गया है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, तदेव रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो मायाभिपुरुरूय ईयत युक्ताह्यस्य हरयः शतादश। इंद्रः एकः मुख्यः प्राणाभिमानी देवः, इंद्र उसी को कहते हैं, समस्त प्राण शक्तियों का एक अधिष्ठाता। शतपथ ब्राह्मण में उसको आसन्य प्राण कहा गया, मुख्य प्राण, वही चेतना शक्ति मुख्य। और भी मंत्र हैं, उधर नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार से अष्टादश विद्या के रूप में, और ये पूरा ज्ञान विज्ञान आ गया। अष्टादश विद्या में पूरा ज्ञान, जब हम ये चलते हैं यज्ञ आदि भौतिक स्तर के, आदिदैविक स्तर के, और आध्यात्मिक स्तर का जो ब्रह्म तत्व चिंतन है वो भी एक तरह का यज्ञ है। तो वह एकस्थ भाव का यज्ञ है। ये इधर ज्ञान का आया, अब विज्ञान के क्रम में आइए तो पूरा जो हमारा वेदांग है, उपवेद उपांग है, और उपवेद में तो पूरा विज्ञान आ गया, चाहे वो मिलिट्री साइंस हो चाहे और जो कुछ भी हो, सब विज्ञान आ गया। और ये सारा का सारा विज्ञान जो कुछ भी, चाहे महाभारत रामायण में आपने देखा है सुना है, अंतरिक्ष का जो क्रम है, तपोबल से ये ब्रह्मास्त्र अर्जित किए जाते थे, दैवी शक्ति से संपन्नता उनकी। हमारा जीवन, सारी सृष्टि केवल आदि भौतिक स्तर पर सीमित नहीं है, यही ऋषि भाव की प्रवर्तना है, क्योंकि ऋषियों ने ही तो वेद के माध्यम से सृष्टि और जीवन के स्वरूप का प्रवर्तन किया। आदि भौतिक स्तर पर जो भी हमारा जीवन है वो केवल 1/4 है, चौथाई, 3 हिस्सा तो बाकी है जिसको हम जीते ही नहीं। इसलिए नहीं जीते कि हम सोचते हैं यही पूरा है। मंत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एतावानस्य महिमा अतो जायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतं दिवि। पाद माने चतुर्थांश। ये समस्त भूत जो नाम रूपात्मक स्थूल जगत है, केवल 1/4 हिस्सा हमारे जीवन का है और सृष्टि के जीवन का। स्थूल व्यवहार जो हम करते हैं वो केवल 1/4 है। 3 हिस्सा जो है, 75% तो हम अपना जो हमारी संपत्ति है उससे वंचित अपने को रखते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि, हमारे पूर्वज हैं, करोड़ों अरबों असंख्य रूप में जो संपत्ति है वो हमें दे गए। जैसे कोई अरबपति खरबपति अपने बच्चे को बैंक में अरबों खरबों की संपत्ति दे जाए, वो हजारों की ही संपत्ति को अपना सब कुछ मान के उसी से जीवन यापन करे। अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, उसकी अपनी है। वेद कहते हैं स्वयं को जानो, अपनी ज्ञान विज्ञान में इस संपत्ति को जानो, स्वयं पूर्ण हो, सभी को पूर्ण करो। यही तो पूर्ण मद पूर्ण विदम का उद्घोष है। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र के रूप में उपांग की चर्चा हुई, तो थोड़ा सा उधर से भी ऋषि के बारे में क्या है। रत्नकोश और मत्स्य पुराण के अनुसार ऋषियों का पारंपरिक विभागगत स्वरूप निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है। एक श्लोक ही है, सप्त ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षयः कांडर्षिश्च श्रुतर्षिश्च राजर्षिश्च क्रमात् वराः। 7 मुख्य क्रम है, ऐसे तो अनियमित ऋषियों का क्रम, 7 मुख्य क्रम है ऋषियों का। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि। संकेत देते चलते हैं किसको क्या कहते हैं। इसमें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठादि हुए आदि ऋषि जो परा, हाँ तो वो परा जो भाव है वाक् तत्व का, उस परा भाव में जो ओंकार अत्यंत सूक्ष्म, उसमें मुँह से बोलने की बात नहीं, अत्यंत सूक्ष्म जो परा भाव में जो प्रणवाक्षर रूप वेद है वह आदि ऋषियों के अंतःकरण में आविर्भूत होता है, प्रकाशित होता है। उस संदर्भ में वो चत्वारी वाक् परिपता पदानी मंत्र का क्रम आया था। तो उस परावाक के रूप में ओंकार का, ओंकार रूप जो प्रणवाक्षर है वो समस्त वेदों का बीज रूप है। जैसे बरगद का विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज में उस विशाल वृक्ष की सत्ता है, इसी तरह ओंकार रूप प्रणवाक्षर में उस पूरे अष्टादश विद्या रूप वेद की सत्ता निहित है, प्रकाशित होता है धीरे धीरे। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठादि हो गए, देवर्षि जो है कणाद आदि हैं, महर्षि जो हैं व्यास आदि, परमर्षि भेल और आदि, कांडर्षि जैमिनी आदि ऋषि हो गए, श्रुतर्षि सुश्रुत आदि जो आचार्य हो गए, राजर्षि ऋतपर्ण आदि इस प्रकार से वहाँ विवेचित हुए। मत्स्य पुराण का यह विवेचन है, रत्नकोश एक है। तो इस प्रकार से ये ऋषियों की जो आदि भौतिक क्रम में एक परंपरा है वह अलग अलग स्तर पर अलग अलग विषयों के और शास्त्रों के विवेचन क्रम में इस प्रकार से प्रवर्तित होती रहती है। फिर वही जैसा मैंने कहा, जो भी हमारा जीवन है या सृष्टि का जीवन है केवल इस आदिभौतिक स्तर तक सीमित नहीं है, आदिभौतिक आदिदैविक दो स्तरों पर इसका समन्वय है। गीता में जैसा कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सुतः। हम अपने के अपने को जाने, अपने क्षेत्र विस्तार को जाने, परस्पर व्यवहार करें, सारी सृष्टि में सुख संपत्ति का विस्तार होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी, यह मंत्र में कहा गया है। फिर हमारे शरीर में भी ऋषि हैं जो हमारे ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, ये ऋषि रूप हैं। मंत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्तरक्षन्ति सहमप्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतः अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। देखिए कितना विज्ञान है। सात ज्ञानेन्द्रियाँ जो हैं, उसमें दो आ जाता है, देखिए कान दो छिद्र हैं ना, नाक में दो छिद्र हैं, आँख दो हैं, छह हो गई, और एक मुख वाक् तत्व। ये सात जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं वो ऋषि हैं, क्योंकि ये प्राणात्मक जो शक्ति है वो है। भाई आँख तो हमारी भी, चाहे हम चश्मा लगाएं चाहे न लगाएं, एक ऐसी तो दिख रही है ना, लेकिन कोई पूछे कि ये चश्मा हट गया पढ़ो क्या लिखा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? अवस्था के आधार पर जो हमारी दर्शन शक्ति है नेत्रों की वो क्षीण हो गई, कान की, कान तो ज्यों का त्यों है, क्षीण हो जाती है शक्ति। प्राणात्मक जो सत्ता है वाइटल फोर्स, वो ही वस्तुतः नेत्र हैं, कान हैं, नासिका है, वाक् तत्व है। ये सात ऋषि हैं, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, और ये सात हमारे शरीर की रक्षा करते रहते हैं। और इनमें भी दो, इसका भी आधिदैविक और आधिभौतिक स्तर पर विवेचन है, दो जो हैं प्राण और अपान रूप जो हमारी इंद्रियां हैं, ऋषि हैं वो। ऋषि इसलिए हैं कि इंद्रियां, देखिए इंद्रियों में भी अंतर आ गया, हम जब सो जाते हैं तो हम ना देखते हैं ना सुनते हैं, भौतिक जगत, स्वप्न देखना अलग बात है, सीमित हो जाता है ना। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो एक हमारा अत्यंत आत्मीय है, इस पर विस्तार से नहीं जाऊँगा, कभी होगी चर्चा तो करूँगा, वो जगता रहता है, हमारी रक्षा करता रहता है। अत्यंत आत्मीय कौन है, ये तात्विक दृष्टि से विचार करें तो ये प्राण शक्ति ही है, ऋषि अत्यंत आत्मीय। जब हम सो जाते हैं, जितने हमारे सगे संबंधी हों, पत्नी सर्वांग रूप में सबसे नज़दीक होती है, लेकिन जब व्यक्ति सो जाता है तो पत्नी का संबंध व्यवहार उस सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरी चार अवस्थाएं हैं ना। जागृत में ठीक है व्यवहार चल रहा है, स्वप्न में तो हम अकेले अपने क्रम में हो गए, और जब सुसुप्ति में गए साउंड स्लीप, तो मन भी पीछे छूट जाता है। मन की भी सामर्थ्य नहीं है कि जो सुसुप्ति है वहाँ जाके देखें कि क्या हो रहा है। सुसुप्ति में हम अनुभव के आधार पर कहते हैं कि हम जब जगते हैं साउंड स्लीप के बाद, गंभीर निद्रा के बाद जब हम जगते हैं, तब हम कहते हैं आह बहुत ही सुख शांति, बहुत ही स्फूर्ति, ताजगी शरीर में हो। रात भर स्वप्न देखिए तो सुबह कहेंगे अरे रात भर स्वप्न देखा, मन भारी है, शरीर शिथिल है, दर्द हो रहा है, मन संक्रमणशील रहता है इसलिए हम थकते हैं। स्वप्नावस्था में हम थकते हैं, मन जो है चलता रहता है। सुसुप्ति अवस्था में हम मन भी अपना काम करने का बंद कर देता है, मन भी साथ छोड़ देता है। उसके बाद देखिए कौन साथ दे रहा है, हमारी श्वास प्रश्वास रूप जो स्थिति है वही प्राण और अपान रूप ऋषि हैं। ये दो हमेशा जगते रहते हैं, अस्वप्न जऊ कभी सोते नहीं, सत्र सजौ तो ये वो हमेशा त्राण करते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसे ये जो ऋषि परंपरा है, और जैसा मैंने कहा शरीर छूटने के बाद भी वो ऋषि भाव नष्ट नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। शरीर स्थूल शरीर छूटता है मृत्यु के क्रम में, वो ऋषि भाव तो अपने आप में यथावत रहकर अपने क्रम को बनाए रखता है। बहुत से प्रमाण हैं, फिर कभी होगी बात तो आप लोगों से के बीच बात करने से बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए आप समस्त विज्ञजन हैं, और विज्ञजनों के बीच जब बात की जाए तो बड़ा संतोष होता है, कुछ आप लोगों से भी सीखने का अवसर मिलता है। तो ये वाक् तत्व रूप जो हैं, ये जो ऋषि हैं आधिदैविक आधिभौतिक क्रम में उनका है। अब समापन ही कर रहा हूँ। वैदिक ऋषि परंपरा का वर्तमान कालिक व्यवहित स्वरूप, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आद्यर्षि ब्रह्मर्षि हो गए, फिर श्रुतर्षि हो गए जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में इसका, फिर अष्टादश विद्या के रूप में जो वेद का विस्तार किया, ये सब ऋषि हो गए। अब हमने शास्त्र कह रहे हैं ऋषि जो है वो अनादिकालीन एक भावात्मक सत्ता है, वर्तमान काल में ऋषि का क्या स्वरूप, वर्तमान काल में भी ऋषि हैं कि नहीं। शास्त्र कह रहा है वर्तमान काल में भी ऋषि हैं, इसकी चर्चा निरुक्त के 13वें अध्याय में है, और मंत्र बहुत से हैं तो वेदों में है, पढ़ दे रहा हूँ। वैदिक ऋषि परंपरा से संबद्ध जो है टॉपिक है वैदिक ऋषि परंपरा का वर्तमान कालिक व्यवहित स्वरूप। वैदिक ऋषि परंपरा से संबद्ध उपर्युक्त विविध विवेचनों के आधार पर यह निर्दुष्ट दोष रहित रूप से सिद्ध होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की नित्यानंदमयी चेतना शक्ति का व्यावहारिकी सत्ता में सर्वप्रथम दिव्य रूप से प्राकट्य शब्द ब्रह्म रूप वाक् तत्व के पराभाव में प्रणवाक्षर के रूप में निनादित होता है, चर्चा हो चुकी है। पुनश्च यह निनाद क्रमशः पश्चंती मध्यमा तथा वैखरी स्तर पर आवर्तित होता हुआ समग्र सृष्टि व तद्गत जीव सत्ता का आधार बनता है। इसे लोक व्यवहार में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के रूप में भी परिलक्षित किया जाता है। नित्यानंदमयी इस चेतना शक्ति के सृष्टिगत नाम रूपात्मक सखंड डिवाइडेड असंख्य रूप में विभाजित जो चेतना शक्ति का स्वरूप है, और तथा तन्मूलक अखंड स्वरूपों की प्रकाशक श्रुतिमति बुद्धि लक्षणा, वेद का ये निरुक्त का वचन है और वेद में भी मंत्र में इसका है। तो जो श्रुतिमति बुद्धि बुद्धि लक्षणा है वही ऋषि भाव है और वो व्यक्ति में अभ्यास से प्रकाशित हो जाता है। अब श्रुतिमति बुद्धि बुद्धि लक्षणा क्या है? वेद रूप वाक तत्व के तर्क सम्मत विवेक से समन्वित जो हमारा हमारे अंतःकरण की वृत्ति है वही श्रुतिमति बुद्धि है। रीजनिंग के साथ, रीजनिंग विज्ञान का आधार रीजनिंग है ना, तर्क। रीजनिंग के आधार पर किसी चीज़ को हम सिद्ध करेंगे वो विज्ञान परक होगा, विज्ञान सिद्ध होगा। पूरा सृष्टि और जीवन का जो विज्ञान है वह रीजनिंग के आधार पर जो समझता है उसका जो प्रकाशन करता है और तद्वत जो हो जाने की सामर्थ्य रखता है वही ऋषि। और ये सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, पूरे विश्व में इसकी सत्ता है, पूरे काल में इसकी सत्ता है और कोई भी व्यक्ति जो सत्प्रयास है उसके द्वारा उस सर्वदर्शन सामर्थ्य ऋषि भाव की अपने में स्थापना कर सकता है, यह प्रमाण के साथ बतलाया गया। तो श्रुतिमति बुद्धि लक्षणा वेद रूप वाक तत्व के तर्क सम्मत विवेक से समन्वित अंतःकरण की निर्दग्ध कलमश शुद्ध वृत्ति ही वस्तुतः ऋषि भाव का साक्षात प्रतिमान है। इस श्रुतिमति बुद्धि लक्षणा रूप निरुक्ति निर्वचन वृत्ति का पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति हेतु, हमारे चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म को संकुचित अर्थ में ना लेना लिया जाए। धर्म माने सत्य भाव, राइटसनेस। धर्म का वेदों में मीमांसा में बड़े ही स्पष्टता के साथ उसकी डेफिनेशन है, लक्षण किया गया है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, वेद प्रतिपादित हो इसलिए कि वेद जो है वो पूर्ण जो ज्ञान की राशि हैं, प्रयोजनवान होना चाहिए, उद्देश्य परक, बिना प्रयोजन के कोई कार्य जो है वो उचित नहीं होता। अर्थ, ये तीसरा जो है, अर्थ माने वो द्रव्य संपत्ति नहीं, यहाँ अर्थ का अर्थ फिर आ जाइए, गति गत्यर्थक, यानी गति। हम कोई भी कार्य करें, कर्तव्य रूप कर्म करें, यज्ञ करें या और जो भी सामाजिक कार्य करें, अगर उससे केवल हमारा माने हमारा का मतलब है कि यज्ञकर्ता का अगर कल्याण होता है वह अधर्म है, और यज्ञकर्ता का भी कल्याण होता है, पूरी सृष्टि पूरे विश्व के जन का कल्याण होता है वही धर्म। बड़े स्पष्ट रूप में धर्म का विवेचन है, धर्म की परिभाषा की गई है। इस रूप में जो धर्म राइटसनेस सत्य भाव, उस सत्य भाव की प्रतिष्ठा सार्वकालिक है, आज भी उसी प्रकार से वह प्राप्तव्य है। केवल उसके लिए जो जुड़ने का सही क्रम है उसके साथ जो भी जुड़ता है आप्त पुरुष के रूप में वह जो है प्रतिष्ठित होता है और वही आप्त पुरुष ऋषि है। तो ऋषि भाव आज भी वर्तमान काल में भी प्रवर्तित है, केवल उसके साथ जुड़ने का जो क्रम है वह हम सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति हेतु सम्यक आधान जिस आप्त पुरुष रूप व्यक्ति विशेष में जीवंत होता है, सब में है, उसे जीवंत करने की जरूरत पड़ती है, जगाने की, जागृत करने की। मैंने कहा था संतुलन जो है साइकिल चलाने का या तैरने का जो संतुलन है सब में है, अभ्यास से उसे जागृत किया जाता है। जब हम जागृत कर लेते हैं तो उसके स्वामी हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। जागृत नहीं करते तो हम अपने को अधूरा रखते हैं, तब सृष्टि के अधीन अपने को बनाए रखते हैं। पानी में बिना तैरने की कला के कोई अगर कूद जाए गहरे पानी में तो पानी दबोच लेगा ना, डुबो देगा। वही तैरने की कला जो है उसको जागृत कर लिया, समुद्र भी पार कर लेता है। जागृत करने की आवश्यकता है, जीवंत भाव जीवंत होता है व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष में जीवंत होता है वह वर्तमान काल में भी ऋषिपद से विभूषित होकर स्वयं की पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ इतर जनों के सम्मान का भी प्रवर्धक सिद्ध होता है। एतावता वैदिक ऋषि परंपरा का समग्र स्वरूप सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक रूप में सदा सर्वदा से आप्तजनों द्वारा प्रवर्तित व व्यवहृत होता हुआ निदर्शित होता है। धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय।